का पूर्व चतुरा हुए भी महाप्रभु को स्तुति करते हुए कहते हैं दया विद्या निज भक्ति जो कभी कहते हैं दया विद्या निज भक्ति जो को जो शिक्षा देने के लिए वो पुराण पुत्र जो महाप्रभु जगत में आए और महाप्रभु भक्त जत गया के प्रसाद इसलिए इनका स्तुति में इसलिए प्रभुपाद कहते हैं नमः गौरवीश्वराय साक्षात वैराग्य मूर्ति कहते इनका मूर्ति क्या था कहते साक्षात वैराग्य का मूर्ति है इसलिए वैराग्य का दो अर्थ होता है एक अर्थ होता है साधारण रूप में विषय में वैराग्य है इसलिए इनका भी कहते हैं रघुनाथ रघुनाथ वैराग्य जैसा पाषाण रेखा उसी तरह इनका अंदर में भी रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे इनका अंदर में साधारण रूप में बड़े वैराग्य जीवन देखने को मिलता है ऊपर का जो उनका बेस है और दूसरे वैराग्य का तात्पर्य होता है विशेष पूर्वक भगवान का चरण में अनुराग है इसलिए साक्षात वैराग्य होता है तथा पितर लंभ रसाम बोधे तथा वैराग्य विशेष अनुराग कैसे था तथा पितर लंभ रस था ये साक्षात बुद्धिमान थे इसलिए सगर हम श्रवण कर रहे थे कैसे हर समय कोधाए को प्रेम भरी राधे राधे यह कीर्तन उनको बहुत ही प्यारा था सब समय कोधाए को प्रेम भरी राधे राधे बोल के कीर्तन करते थे और कभी कभी वे दरवाजा बंद करके बड़ी जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र को इतने जोर जोर से उच्चारण करते थे ऐसे लगता था मानो गला फट करके खून बहने लगेगा इतने जोर जोर से हरिनाम करते थे इसलिए इनका सिक्का है उच्च स्वर कर हरि नाम गाओ नामे प्रभाव स्मरण है वे सेकाले भजन निर्जन संभव इसलिए उच्च स्वर में हरिनाम करने के लिए उन्होंने विशेष पूर्वक सिक्का दिया है इसलिए जो इसलिए कभी कभी इनके पास में कोई कोई व्यक्ति आते थे कहते बाबा जी महाराज हमको सिद्ध प्रणाली की सिक्का दो अष्टकार्य लीला की हमें सिक्का दो लेकिन बाबा जी महाराज तो साक्षात सिद्ध पुरुष है उनको पता है ये अनधिकारी व्यक्ति ये सिद्ध स्वरूप की चिंता नहीं कर सकते ये अष्टकार्य लीला स्मरण करने के अयोग्य है इसलिए वे अनधिकारी व्यक्तियों को यह चीज नहीं दिया करते थे सिक्का नहीं देते थे इसलिए इनका जो जीवन है साक्षात वैराग्य मूर्ति है इसे श्रीमद् भागवत में महा वैराग्य करे परापेक्षा अतएव कृष्ण कार्य करे उपेक्षा कहते जो वैराग्य है उनको विशेष करके लखन है रक्षी सती विश्वास और गोत्र से वर्णन कथा कहते उनको भगवान गोबर में यह विश्वास होनी चाहिए भगवान अवश्य रखे कृष्णा विश्वास पालन भगवान संपूर्ण रूप में हमें रक्षा करेंगे और भरण पोषण करेंगे तभी इन चीजों को विश्वास कर सकते हैं वही कर सकते हैं जो संपूर्ण भगवत चरण शरणागत इसलिए भागवत में सिर्फ शुद्ध गोस्वामी एक शुद्ध वैराग्य के लिए जो लक्षण उन्होंने बताया कोई बलगा भैया अगर सब कुछ छोड़ छाड़ कर भजन करने के लिए आएंगे फिर हम खाएंगे भैया तब सिर्फ शुद्ध गोस्वामी कहते हैं क्या भगवान पर विश्वास नहीं है भगवान ने इतना बड़ा पृथ्वी बना दिया इतने पेड़ पौधा फल मूल लगा दिया फिर तुम खाने के लिए कुछ चिंता करते हो कहते भैया कम से कम सोने के लिए तो नहीं स्थान होनी चाहिए कहते क्यों भगवान सुंदर सुंदर गुफा बनाए और इतना बड़ा पृथ्वी क्यों बनाया उन्होंने हाँ इतना बड़ा पृथ्वी बनाने सोने के लिए कमी है जिसने कहा भैया सिर्फ पीने के लिए तो पानी चाहिए इतने भगवान इतने जो गंगा जो बना सरस्वती कावेरी नर्मदा इतना नदी जो बनाया तो भगवान क्यों इतना नदी भी बनाया कहते ठीक है लेकिन सबको पानी पीने के लिए कोई पात्र तो चाहिए कहते क्यों भगवान अंजल नहीं दिया ये अंजल दे दिया इसलिए पानी भर कर देती लो कहते भैया सोने के लिए तो कहीं बिस्तरा चाहिए हाँ बिस्तरा चाहिए और सोने के लिए बगैर तकिया क्यों नहीं दिया आई कहते क्यों भगवान ये हाथ नहीं दिया ये हाथ की सहारा से सो जाओ कहते अगर जंगल में आप बोलते हो जंगल में रहकर भजन करेंगे अगर शेर आकर खा गया तो कहते क्यों भगवान क्या अपना भक्त वत्सलता प्रभु ने क्या छोड़ दिया है भगवान को प्रभु को विश्वास नहीं है हैं। जो सुखदेव गोस्वामी एक निरपेक्ष वैराग्य के लिए जो बता रहे क्योंकि धन दुर्बल दुर् मंदा जो धन मतवा थे उनको पास में गिड़गिड़ा मिटा उनको पास में हाथ भरने कोई जरूरत नहीं है। भगवान निर्भर करके भगवान भजन करो भगवान संपूर्ण दिन कर रखा करेंगे। क्योंकि यह जो श्लोक सुंदर गोस्वाम बताए ये एक एक वस्तु ये गौर किशोर दास महाराज महाराज का जीवन में ये देखने को मिला। इसलिए गौर किशोर दास महाराज महाराज फिर रहते थे कहाँ पर कोई अच्छी जगह पर नहीं वो साधारण में पैखाने में रहते थे। कहते क्यों कहते ये इसका बदबू सही है हाँ लेकिन बाहर रहेंगे इससे लोग इनको आकर तंग करते थे जानते थे सिद्ध महात्मा इसलिए कभी भी चारी तरफ में ताजा विश्वास मछली का तांता चारी तरफ में बिछा देते थे। कहते साधारण लोगों को यह विश्वास हो कि वाह मछली खाने वाला बाबा है कहते ये मछली का तांता किनारे कम से कम मेरे को तंग नहीं करेंगे इसे का जो दंड है कम से कम काम तक नहीं आएगा। इसलिए उन्हें सिर्फ डर से वो पैखाना कर देते रहोगे जोर जोर से हल्ला कर सके। जिस समय हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज आकर के जिस समय उनको कृपा प्रार्थना और उनको कृपा प्राप्त किया और उनको कृपा प्राप्त करके निर्भय होकर के सारा जीवन में जैसे उन्होंने निर्भय होकर के सिंह रूप में सर्वत्र उन्होंने प्रचार प्रसार किया ये महापुरुषों का आशीर्वाद है और उनको सिंह का बच्चा भी सिंह होता है। इसलिए हमारे महात्मा जी को देखो अभी एक शहर है हमने बहुत सारी जगह में गए महाराज जी को देखा बड़े से बड़े व्यक्ति का वृंदावन दो तीन जगह में देखा कहीं भक्ति का विरोध कहीं मायावादी के बारे में किसने बोल दिया तो महाराज की शेर जैसे एकदम उस पर झपट पड़े। मैं तो इतना डर रहा था महाराज इतने बड़े आदमी इसको ऐसे ऐसे उसको ऐसे ऐसे उसको एकदम उसका जो सिद्धांत हो ऐसे चकना चक कर रहे थे डर रहा था महाराज जी कोई डर रहे हैं नहीं। इसलिए ये गौर किशोर दास महाराज महाराज परंपरा में समझो कि महाराज जी एक शेर का बच्चा शेर जैसे है इनका जो क्रिया है कभी कभी प्रभुपाद से कुछ अलग दिखती है। जैसे प्रभुपाद ने कहा देखो ये कलकत्ता जो है ये कली का स्थान है खबरदार वहां जाना नहीं। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया सर्वप्रथम हुए श्री पार्वजा गोविंद मठ सर्वप्रथम उन्होंने स्थापन किया है और प्रभुपाद ये गौर किशोर दास महाराज महाराज का जैसे बेस है कौन सा बेस है कहते बाबा जी बेस है लेकिन प्रभुपाद का दिखाई पड़ता है प्रभुपाद का दिखाई पड़ता है संन्यास बेस किया और संन्यास बेस लेकर प्रचार किया। और हमारे गौर किशोर दास महाराज महाराज ने कहा था जब मैं अपना शरीर छोड़ूंगा मेरे चरण में रस्सी बांध करके संपूर्ण नवद्वीप में मेरे कलेवर को पूर्ण दिशा के लिए मेरे को विलास नहीं करना कम से कम तो मुझे प्राप्ति होगी। लेकिन प्रभुपाद ने वो काम नहीं किया इसलिए जिस समय गौर किशोर दास महाराज प्रकट होते हैं उसी समय खबर पाते ही प्रभुपाद वहां पर आए और कुछ बाबा जी लोग जानते हैं सीधा महात्मा अगर इसको समाधि देंगे कम से कम लोग आकर उसको प्रणाम देंगे कम से कम अपना बिजनेस चल जाएगा। इसलिए कुछ लोग वहां पर बाबा जी लोग एकत्रित हो गए प्रभुपाद सुनते ही वहां पर अपना शिष्य प्रशिष्य को लेकर वहां उपस्थित होते हैं उपस्थित होकर के दावी करते हैं ये वैराग्य महापुरुष है इनका अगर कोई शिष्य है केवल मैं ही अकेला शिष्य हूँ यहाँ पर कोई शिष्य नहीं। यदि वहां पर चार बाबा जी बोल रहे हम ही शिष्य है उससे बड़े झगड़ा हुआ वहां पर पुलिस अफिसर लोग आ गए जो पुलिस अफिसर आए वहां पर प्रभु प्रभुपाद वहां पर दावी किया इनका शिष्य कोई नहीं तो उन्होंने कहा आपको क्या प्रमाण है क्योंकि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं ये साक्षात महापुरुष है महाभागवत अप्रकट कलेवर अगर इनको शरीर को कोई अगर स्पर्श करेगा तो वो ध्वंस हो जाएगा। इसलिए अगर कोई इनका शिष्य ये त्यागी है और मैं भी उनके त्यागी शिष्य हूँ इनको कोई त्यागी महापुरुष ही समाधि दे सकता है लेकिन यहाँ पर कोई नहीं कभी उनको बाबा जी वैसे है चल ऊपर से केवल बाबा जी वैसे लिया है अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर बाबा जी में है एक साल के अंदर में अगर किसी ने मन में भी कोई व्यक्ति अगर स्त्री संग नहीं किया वो आ करके इनको समाधि दे नहीं तो इनको शरीर को स्पर्श करेगा तो चल करके राख बन जाएगा। उनको सुनते ही बाबा जी लोग कहाँ गए जो बाबा जी भ्रष्टाचार थे वो तो पीछे पीछे सरकने लगे कहता अगर एक साल में नहीं हो छह महीना के अंदर में अगर किसी ने स्त्री संग नहीं किया है अगर वे आकर के पहले तक, एक रात के पहले तक मन में अगर इसने स्त्री को स्मरण नहीं किया, अगर इसे कोई व्यक्ति आए तो समाज से बाहर बोलते ही सभी को अवस्था खराब हो गया और एक एक इंसेक्ट सबके सब भीतर गए। यहाँ पर जितना पुलिस अफिसर थे वो दंग रह गए, ऐसे ही सब साथ हुए। तो प्रभुपाद ने उनको शरीर को, उन्होंने बताया था हमारे शरीर में रस्सी बांध कर के वो लोग सोच रहे थे, तो किशोरदास बाबा जी महाराज का निर्देश रहे रस्सी बांध कर संपूर्ण नवद्वीप में उनको पूरा शरीर को इस फिसलते हुए ले जाए। प्रभुपाद ने कहा उनको दुर्दय सोच भावना है, साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकते हैं। एक शुद्ध शिष्य के हृदय में ही शुद्ध गुरु जी का भावना प्रतिफलित होते हैं। और प्रभुपाद ने कहा जिस शरीर को, जिस समय हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर को त्याग दिया, शरीर क्या है, वैष्णव का शरीर अपराधित दिव्य है, इसलिए वो शरीर को महाप्रभु कितना आदर दिया, अपना खोद में उठा करते होते हुए महाप्रभु कीर्तन करते 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 और समाधि करते अपना हस्त में महाप्रभु ने इतने आदर दिया वैष्णव शरीर को, उनको कोई रज की कोई नवोदित रज की उनको कमी है। जब 24 घंटा में नैरंतर किया, उनने कहा कलकत्ता में नहीं जाना, अगर कोई भागवतर दोनों मठ मायापुर में नव मठ हो चैतन्य मठ जगत में मठ स्थापन नहीं करते। अभी हम लोग जो पापी से पापी कीड़े से कीड़े हैं, कभी अभी थोड़ी बहुत जो भगवत भक्ति अनुशीलन करने का जो थोड़ी हमें सुजग मिल रहे, कभी हमें सुजग मिल सकता था। लेकिन प्रभुपाद अगर प्रचार नहीं करते तो गौरव सरदास प्रभा जी वहां के महिमा सारा पृथ्वी सुन रहे हैं। हाँ, और सारा पृथ्वी के लोग जो कृष्ण नाम ले रहे हैं, कि कभी हो सकता था तो क्या गुरु क्या चाह रहे हैं, गुरु जी का क्या इच्छा है, गुरु जी का इच्छा है श्री चैतन्य मन अभिष्टम स्थापितम जयंत करे चैतन्य महाप्रद मन अभिष्ट है। महाप्रद मन अभिष्ट क्या है, महाप्रद मन अभिष्ट है प्रति भरे भरे किया स्वर एक ही था बोलो भज कृष्णा कर कृष्ण शिक्षा महाप्रभु का यही आदेश है। या वही ना बोले में ना बोला है यार पृथ्वी पे आज जैसा नगर आदि का सर्वत्र प्रचार है वे मरना, ये महाप्रभु का यही मनोविष्ट है। अगर यह मनोविष्ट को किसी ने जगत में स्थापन किया तो किसी ने स्थापन किया है श्री गौरव सिद्धार्थ बाबा जी महाराज ने अभिष्ट ही यही, तब उन्होंने उनको अभिष्ट को संपूर्ण पृथ्वी में उन्होंने प्रचार करके अभी सारा दुनिया कृष्ण नाम कीर्तन में नाच उठ रहे, सब कृष्ण कीर्तन में सब मधुआला बोल हो रहे, कि किसका कृपा है ये गौरव सिद्धार्थ बाबा जी महाराज प्रभुपाद और हमारे गुरु पर उठा ये कृपा है। इसलिए उनका वो कभी गुरु को विरोध नहीं किए, उनको एक समय गौरव सिद्धार्थ बाबा जी महाराज बड़े सुंदर शांतिपूर्ण धोती और बड़े सुंदर कुर्ता पहन करके हर बार प्रभुपाद को पास आए, जो कि अत्यंत भयाग रूप में रहने वाले किसी तरह से काफी करके इसको देख करके बने आए ये गौरव सिद्धार्थ बाबा जी महाराज इतना भैया धोती इतने भैया कपड़े और हर भाषा क्या बात है, कहते आप ऐसे क्यों रह रहे हो, कहते यही बस नहीं बस क्यों, कहते कुछ बाबा जी लोग बाबा जी जैसे बैराग का बेस लेकर के बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लिए हुए बाबा जी का बेस कर रहे हैं बड़े गति गति का, उससे तो अच्छा है अच्छे बेस में खाड़ वाल करा किसी समय किसी सिक्के के ऊपर में साधु को पास में आ करके धीरे 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 उसको संपूर्ण ग्रास कर लेते हैं। इसलिए धीरे 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 जीव प्रबंध होते ही है, धीरे धीरे सेवा पाप पा करके उसको प्रति हो जाता है। प्रति भावना धीरे धीरे जैसे प्रेम बढ़ते 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 भगवान से मन हट करके माया में मन चला जाता है, माया फैल जाता है। इसलिए किसी ना किसी जीवन में उनका आदर्श को लेते हुए जैसे हम अपना जीवन में नजर साधन में कुछ कर सके।
Also, they perform their internal bhajan Internally, they were absorbed 24 hours in remembering Radha and Krishna's pastimes and wandering throughout the land of Raja. But externally, they were also showing Sakyapurva Kanamadana Dhatavi Kalavasani Kutora. Nitrahara Viharakari Vishito Chaktam Purino Chayo. So they were externally showing very high level of renunciation by dint of their absorption in the eternal pastimes of the Lord. So it is important to understand, in the case of Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj, that we say he was sakshat vairagya murtai. He was directly the embodiment of vairagya. But this vairagya, it was not artificially imposed, or it was not an external effort of his, but rather this vairagya was the result of his extreme moods of viprarambha, separation moods, and his deep absorption in the pastimes of the Lord. Just as Srila Raghunath Das Goswami, his renunciation was considered to be impeccable, and just like the lines that are created on a stone, they cannot be erased. So firm was his vow of renunciation. So in the same way, Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj's renunciation, it was on this same level. So his absorption in the eternal pastimes of the Lord was evident by the bhajan that he was performing, how he was completely aloof from all external association, and he preferred, even at one stage in his later life, he preferred to live within an external surrounding of a latrine with very bad odors and smells, and being absorbed completely in internal nam-bhajan and remembering the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu, his Namadvipa Dham. He was living in the Dham. He had no sense of this external, apparently very abominable condition. So he was completely immersed, so much so that he told, I prefer to be in this place rather than smell the stench of the materialistic persons who are absorbed in the abominable sense gratification of this material world. So, Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj, he exhibited his mercy upon so many individuals who had come to him. And there are many narrations of different incidences from his life where he gave good advice. Because although he was a bhajanandi, he was not going to meet the public directly. He was not performing the activities of Gosthiyanandi, which his great disciple, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, performed. But they were, of course, on the same level. The difference between bhajanandi and Gosthiyanandi is only in the internal inspiration which the Lord is giving in the heart of that pure Vaishnava. Otherwise, there is no difference. Some persons, just like the six Goswamis of Vrindavan, they did not contact the general mass of people so much. But yet we have personalities like Srila Narottam Das Thakur, Srinivas Acharya, Shyamananda Prabhu, and so forth, in Arunabhu Varga, who very extensively preached. But all were on the same level, actually. Only it is a dictation from within the heart, given directly by the Lord, that one will assume this position of Gosthiyanandi or Bhajanandi. So Srila Gaura Kishore Das Goswami Maharaj, he gave very good advices by his, first of all, by his own example. But whenever anyone would come to him, or he would give them very direct advice, he would not mince words, and he would cut to the exact point which they would need for their eternal benefit. There was one incident about a young Babaji who came, and he wanted to do bhajan in the association of Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj. So he was performing bhajan, but Srila Babaji Maharaj was giving him advice that was not to his liking. So he decided to leave that place, and he went off on his own and began to simply do solitary bhajan, nirjan bhajan. But after some time, he became very depressed. He became very sad. And gradually he returned to Srila Lord Kishore Das Babaji Maharaj. And at that time, Srila Babaji Maharaj told him, he said that actually, whatever sharp words are used by the pure devotee, it is his causeless mercy upon the conditioned soul. Because he is actually his real friend. He is telling him what is the real medicine for his diseased condition. And therefore he is acting as his real friend. But unfortunately, the conditioned soul, he doesn't want to be corrected. He doesn't want to hear this good advice from the lips of a self-realized soul. And sometimes when he hears such words which may cut into his heart, then he may decide to leave that place and go away from that Vaishnava. But at the same time, this conditioned soul, he may remain in his home, and he may listen to so many criticisms and chastisements from his family members, from his wife, from his children, but he will never leave them. He will remain there, despite being constantly criticized. So he told this young Babaji that whatever I am teaching to you, it is for your benefit. So you should accept this as my mercy, and you should perform your bhajan in my association. Because in my association, you will be able to hear constantly about the pastimes of the Lord. You will be able to perform non bhajan. And in this way, you will surpass all of the impediments. But if you go off on your own, if you try to do nirjan bhajan on your own, you will simply be associating with your mind, and gradually material desires will overpower you, and you will give up the path of bhajan. So in this way, Srila Lord Kishore Das Babaji Maharaj, many persons, he was very famous at that time in Navadvip Dham as a Siddha Mahatma. And many persons became attracted to him. And they would want to come to him and get his blessings in various ways and get his support. There's one incident of one Munindra Chandri Chandra. Munindra Chandra Gandhi. He was a very powerful royal figure, landowner, but he was also like a king, and he was a Vaishnava. And he had appreciation for the association of the sadhus. So he wanted to invite Srila Lord Kishore Das Babaji Maharaj to come to a very great conference. He was trying to organize a Vaishnava conference. So he wanted that Babaji Maharaj will leave the Navadvip Dham, and he will come there and reside in his palace for some days, and he will attend this Vaishnava conference. So he was begging him and insisting, please Babaji Maharaj, come, come. So then at that time, Babaji Maharaj told this Manindra Chandranandi, he told him that if I go there, first of all, I would have to leave Govardhan. I would have to leave this eternal Dham of my Vishwambhava, my Mahaprabhu. And then I may come there to your palace. And receiving very nice facilities at your palace, such as very nice bedding, very nice food, and so forth, I may become somewhat attached to these things. And gradually, I will become more and more attached, and I may start to see you as my competitor. That, oh, you have so much and I have so little. And therefore, I will make a bit of offense against you, that you are a Vaishnava and a Vaishnava king. So I prefer that this will not happen. I want to have a very loving relationship with you. I want to continue to cultivate your bhakti in your association. So it is better that instead of my going to your palace, that you should give up your palace, all of your wealth, and you should come here and reside with me on the banks of the Ganga and accept the path of renunciation, and together we will hear Hari Katha and we will enjoy the taste of the bliss of pure bhakti. So Manindra Chakra Nandi, of course, he did not take, he did not accept this advice. But nevertheless, Gopi Shardas Babaji Maharaj, he was always being very direct. He would never mince his words, and he would try to give the best advice so that a person could easily give up their material attachments. So Srila Babaji Maharaj, in many circumstances, his life was an example to show that in anyone who is residing in the holy Dham of the Supreme Lord, they must not commit offense against the holy Dham. They must not maintain their material attachments and come to the holy Dham, bringing the same material attachments that they have in their ordinary family life. But if they want to come to the Dham and actually reside in the Dham, well, then they should actually follow this path that he was showing by his own example of total renunciation of the mundane sense gratification and completely absorbing oneself 24 hours daily in hearing, chanting, and remembering the pastimes of the Lord. So this example, if it is not shown by the Mahabharata Vaishnavas, well then, how will the ordinary mass of people know what to do? Because everyone within this material world is in a diseased condition. They do not know what is beneficial for them. But when they come into the association of a great, pure Vaishnava, that Vaishnava can immediately detect, just like the most expert doctor who takes the pulse, can immediately detect what is the best medicine for that individual, and they can prescribe and give them all benefit. So Srila Gopi Shardas Babaji Maharaj, in our disciple succession, he is a very, very, very powerful Mahabharata, who is the spiritual master of our Arakurudev, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. And although Srila Gopi Shardas Goswami Maharaj, from an external point of view, from a material level, he was not educated and even illiterate. But Srila Bhakti Siddhanta Saraswati, on the other hand, he was the most educated person, most highly intellectual, literate person, greatest intellect, powerful personality. But he submitted himself at the lotus feet of Srila Gaura Kishore Das Goswami Maharaj and begged him for initiation. And when he submitted himself by the order of Bhakti Gaura Thakur that he should go there, Srila Gaura Kishore Das Goswami Maharaj said that, "I am not qualified to give you. You are a very exalted personality. And but I am just from an ordinary level, so I cannot give you initiation." And Bhakti Siddhanta Saraswati was crying at his lotus feet. And finally, after repeated attempts, then finally Srila Gopi Shardas Babaji Maharaj, he agreed to accept Srila Bhakti Siddhanta Saraswati. And Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he has written himself that when I met my Guru Maharaj, then every shred of false ego that I ever had within my heart, of course he was a pure, eternal devotee of Lord Chaitanya from the Nitya Dham, but playing the role of Sadhaka in this world. And he told that he completely removed any kind of false ego that I have, and I realized my position as a soul within this world completely dependent upon the mercy of his lotus feet. So in our disciple succession, all of our guru parampara, they are of this level. They are the maha maha bhagavats, and they are rupa rupa vaishnava, rasi vaishnavas, down to the present day, coming down in our mind to Srila Bhakti Pragyan Kesha Goswami Maharaj, Srila Bhakti Raksha Shriya Maharaj, Srila Bhakti Prabhupada Muni Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and down to our beloved Gurudev, Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj, who also told us that I have gone to the university of Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj, and that is now why I can preach all over the world and give this mercy and the message of Chaitanya Mahaprabhu. So we shall bow to this ministry and beg that we can become servants of his lotus feet and become servant of the servant of the servant of Srila Gaura Kishore Das Goswami Maharaj.
Satsang with Mooji.
इस प्रकार Thank you. साई अर्थात कृष्ण संसार के निकट इतने सुंदर प्रमाण आदि देकर के रखा और देकर के वो ईसाई चर्च अपने मत जो बदला और बदला करके और क्या फिर बिहारी ब्रह्म जी के हरास कर दिया अर्थात उनके धर्म के लिए मुक्त कर दिया और किसी प्रकार फिर बिहारी ब्रह्मचारी प्रभुपाद के जय और विष्णु और इसी प्रकार को जब प्रभुपाद के निकट जब पहुंचे प्रभुपाद के आंखों से आंसू आ गया और प्रभुपाद फिर बिहारी
Thank you.
तो ऐसे मालूम होता है कि गुरु जी का आदेश नहीं पालन किया। गुरु जी के भावों को समझ कर उनकी पीड़ा तभी सुनी भावना को समझ करके गुरु के आदेश उल्लंघन करके मालूम होता है उसके विपरीत करना एक व्यथा सुनाया जाता है। नरोत्तम ठाकुर की अपने गुरु जी भजन कर रहे थे और एक आदमी जिन्होंने पानी पिला दिया वो जब पानी पिला उपदेश में सकाली भजन में बाजी रुचि नहीं है तो उसको नहीं समझते तो उस समय किसी तरह से उनको समान जब इनको अपने देश में आकर के उन्होंने सर्वत्र महाप्रभु का वाणी बना इसलिए कभी कभी गुरु के विचारों को समझना चाहिए और समझ करके तर्क उसका पालन कर महाभारत में दिया चाहते वहां पर भी अर्जुन ने कृष्ण की बात को नहीं माना नहीं कृष्ण ने कहा मारो इसको और तारीफ और द्रौपदी ने कहा ने कहा इसको मारो और कृष्ण ने कहा अपने ताई का बहुत नहीं करके पांच सीता ताड़ी रख करके उसका वाचन इसलिए कभी कभी गुरु पर्वों का विचार समझना वास्तविक कठिन होता है किंतु सच इससे हम लोग कहते हैं ये हमारे गुरु जी हैं हमारे शिक्षा गुरु शिक्षा गुरु शिक्षा शिष्य है कौन जो उनके समस्त आदेशों को जान बूझ करके पालन और यदि कोई गुरु से ही तर्क वितर्क करने लग जाए तो शिष्य है उसकी स्थितियों में कभी संभव नहीं इन सब चीजों को विचार करके बहुत किशोर करो संकी कृपा के लिए आज के विश्व कलि में हम लोग भी सभी की कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं अभी रेडी
आपने बताया 17 घंटे पहले आपके साथ मैं गजावर महाराज के पास हम लोग गए थे तो गजावर महाराज बता रहे थे प्रभुपाद के बारे में कि उर्दू तो अपने भगत मलिक के स्थान कलकत्ता मत जाना पहले बहुत कलकत्ता में स्थापन किया और उन्होंने बताया था कि मैं अवगत करूँ आपका सेवा नहीं कर सका फिर पैर में रस्सी बांध करके घुमा कर गंगा में फेंकना पैर में रस्सी बांध कर नवदी में घुमा कर गंगा में फेंक देना उनको अर्थ बताया था
Some pastimes that we heard
So the morning, these are God. Hare Krishna. Only we can arrange pasta. Only he, not another day. So whoever wants to stay longer, they have their own arrangement. We are not responsible for that. So please register your name just after class on the board and tomorrow morning. We have to arrange bus, have to order bus tomorrow morning by 9. So and 6 will be over in Ananda Dham, who will be in Vrindavan, they can attend Ananda Dham Parikrama. Guru will be there on 6th November. Hare Krishna. Thank you for the cooperation. Ananda Dham program will be 3 p.m. in Vrindavan. And after Parikrama will be Prasad also there in Ananda Dham.
The names of all the devotees who received initiation will be announced just now. On the 27th, Mr. Gill from Mumbai. His name is Jagannath Das. On the member of the GDL, Amam Krishna Das from California.
Sudan Mandal, same name.
Suraj, Saka, Sudarshan, Dabrashari, Baru, Prakash, Vrishabaru, Das, Shiva Kumar, Shivananda, Dabrashari, Gautam, Punaraj, Dabrashari, Arun Kumar, Ananta, Dabrashari, Tushar, Sardar, Tarun Krishna, Dabrashari, Vedarani Devi, Renuka, Renuka Devi, Lakshmi Mano, Lakshmi Devi, Gopal Ghosh, Gopal Krishna Brahmachari, Neha Rani, Nandarani Devi, from Govarda, Sumitra Dasi Govarda, Sene, Umashankar Mishra, Umar Shankar Mishra and Kalahati Mishra, Sidi Kharina. Same name. Ramadas Singh from USA, same name, Sidi Desha. Muni Toshdas. Murali Dharadas.
Son.
that he may have committed an offense to some devotee of the Lord, and he should arrange for a great bhandara or a feast. And if any Vaishnava turns down the invitation, then we should understand that he has offended that particular Vaishnava. So then Rupa Goswami did exactly the same, and he found that Khajikesha Das was apparently offended. So this is actually the story which Gurudev also said. This shows the severity of Vaishnava. अभी हम जो नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसका नाम है वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध का गुरुत्व कितना बड़ा है और वैष्णव अपराध से क्या क्या समस्या जीवन में आ सकती है, इसको हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक किंवदंती है कि रूप गोस्वामी जी राधा दामोदर के प्रांगण में भजन कर रहे थे तमाम वृक्ष के नीचे। उस वक्त उनके सामने
now।